कहाँ बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी वर्णन सके महिमा जो तिहारी हम ना सिफते कर सकत तुम्हारी आप ले ओ तुम कथा सुधारी निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द त्रंग प्रगट तिन आगर गहर गंभीर अथा अत बड सुबर सदा सब विद रतनागर संत मराल करें कंतूहल किंजम त्रास मिट्यो दुख कागर कल जुगे दुरते दूर कर बैको दर्शन गुरु सगल सुख सागर कल जुग दुरते दूर कर वैको दर्शन गुरु सगल सुख सागर राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरया मिल साधु खंडल खंडा हे पूरब लिखत लिखे गुरु पाया मन हर लियो मंडल मंडा है काम क्रोध नगर बहु भरया मिल साधु खंडल खंडा हे पूरब लिखत लिखे गुरु पाया मन हर लियो मंडल मंडा हे कर साधु अंजुलि पुन वड्डा हे कर डंडो पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साध न जानिया तिन अंतर हों में कंडा हे ज्यों ज्यों चले चुबे दुख पावे जम काल सहे सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण भव खंडा हे अब नासी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोम खंड ब्रह मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सन्मानियो गुरु रूप सत्संग जीओ सिलसिलावार श्री सोहले जी दी विचार आप सरवन कर रहे हो जिड़ी बाणी सिख जगत विच कीर्तन सुहेले करके प्रचलित है वास्तविक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच इस बाणी दा नाम सोहिला है। खुशी दे गीत, प्रभु दे मिलन दे गीत, सोहिला। कल तक आपने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे पावन पवित्र वाक जिस विच आरती दा जिक्र है, उहदे अखरी अर्थ ते भाव अर्थ सरवण कीते। आरती विच सतगुरु ने विशेष जिस विषय ते जोर दिता हो है कि हे प्रभु, तू निर्गुण भी है, तू सरगुण भी है, तू सूक्ष्म भी है, तू अस्थूल भी है, कि जद दोवें रूप तेरे ने तो फिर दोहां नाल जुड़ना है, सरगुण नाल भी और निर्गुण नाल भी एकाग्रता प्रदान करनी। निर्गुण नाल जुड़न दा वसीला सिमरन है, सरगुण नाल जुड़न दा वसीला सेवा है। सरगुण जो दिखाई दे रहा है, सरगुण जिसनू ये अख वेख लेंदी है, निर्गुण जिनू अख वेख नहीं सकती, जिनू साहबा ने कह दिया लख भी कोशिश करिए इस अख नाल नहीं दिखाई देगा। नानक से अखणिया बेन जिनी डिसंदो मां फिरी। ओ प्रभु, जिस तरह दिखाई देंदा है वह अख नहीं, वह अनुभव प्रकाश है। निर्गुण नु वेखण वास्ते निर्गुण अख, सरगुण नु वेखण वास्ते सरगुण अख। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने ते खुल के कह दिता, अखी बाजों वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना बिन हत्थां करना, जीबे बाजों बोलना इउं जीवत मरना, नानक हुकम पछाणीए तौ खसमे मिलना। दरअसल सूक्ष्म ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म नाल जुड़न दा वसीला ये शरीर नहीं है। निर्गुण ब्रह्म नाल जुड़न दा वसीला निर्गुण मन है। मन दा कोई रंग रूप नहीं। किसे ते प्रश्न करिए, तू अपने हाथ दिखा, तू अपनी अखां दिखा, तू अपने कन दिखा, तू अपनी जबान दिखा, दिखा देवेगा। पर उसते हुण प्रश्न करिए, तू अपना मन दिखा, की दिखाएगा। जिस तरह परमात्मा दा कोई चक्र चेन रंग रूप नहीं पर है, इस तरह मन का भी कोई चक्र चेन रंग रूप नहीं पर है। निर्गुण नाल जुड़न का वसीला निर्गुण, ते सरगुण नाल जुड़न का वसीला सरगुण। जो दिखाई दे रहा है उसकी सेवा करनी है, जो नहीं दिखाई देता उसका सिमरन करना है। गुरु घर विच मूल गल जो प्रधान है वह है सिमरन। ते सिमरन दे चो जिहड़ी सेवा निकलती है वास्तविक वह सेवा है। उहदे च तामीर होंदी है, उहदे च उसारी होंदी है, उहदे च कुछ गल होंदी है। ते सिमरन तो हीणी जो सेवा है सिवाय तकबर फितूर ते गरूर नूं जन्म देण तो इलावा होर कुछ नहीं है। इस वास्ते वड्डी वड्डी सेवा करन वाले भी मगरूरी तबीयत ते फितूर विच अक्सर जो है रहिंदे। सारी दुनिया दे धर्म ग्रंथ दो ही गल करदे ने कि धर्म खड़ा है इन्हां दो गल्लां ते, निर्मल कर्म करने ते परमात्मा दा नाम जपना। पर हुण सवाल यह पैदा हुंदा, निर्मल कर्म केड़ा है, किनू निर्मल कर्म मनोंगे, निर्मल की है। एक कर्म एक मजहब दे च निर्मल मनिया जाता है, दूजे च मलीन मनिया जाता है। गऊ खाना इस्लाम दे च धर्म है, उन्होंने धर्म का अंग है, कोई मैला कर्म नहीं। लेकिन सनातन गुरमत दे च ये मैला कर्म है, क्योंकि गऊ सोचती है, विचारती है, मनुख दे बहुत नेड़े है, दुख सुख ज्यादा महसूस करती है। लिहाजा इसका घात वज्र पाप मन लिया गया। पर हुण सवाल यह पैदा हुंदा, निर्मल कर्म केड़ा है? एको ही तरह के कर्म नूं एक मजहब मलीन कह दिंदा, एक निर्मल कह दिंदा। कदी तुसी विचार करोगे, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸ਼ੁਭ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੋ ਫਿਰ ਨਿਖੇੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਖੜਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦੋ ਨੇ, ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਦੋ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੇਕ ਏਕ ਜੈ ਉੱਤਰ, ਅਲੰਕਾਰ ਮਾਨੋ ਤੈ ਚਿੱਤਰ, ਚਿੱਤਰਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਹੋਵਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦੇ ਚਾਰ ਪੰਜੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਜਵਾਬ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਤਰਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਾ ਅਲੰਕਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੋ ਉੱਚਾ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਨਾ ਕਿਨੇ ਕਹਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਐਸਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜੋ ਗਾਲਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਇਹੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਇਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਰੇ। ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ। ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਭੇਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਖੰਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਲੂਟੇ। ਕਿਆ ਕਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ ਪਖੰਡ ਨੇ? ਪਖੰਡ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਜਪ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੀਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਸਿਮਰਨ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਰਮ ਵੀ ਪਖੰਡ ਧਰਮ ਵੀ ਪਖੰਡ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਲੂਟੇ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੇ। ਅਡੋਲ ਨਿਰਵਾਣ ਅਡੋਲ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਇਨ ਕਰੋ, ਨਿਮਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਿਮਰਨ, ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ जिथे जप है वास्तविक निर्मल सेवा ओही है, नहीं ते सेवा कामना वाली होवेगी तो सेवा सेवा नहीं, वो व्यापार है। महाराज कहते हैं कोट मधे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी, बाकी ते सब व्यवहार है, बाकी ते सारी संसार दी जो है लीला है। तो कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, कीड़ा कर्म पखंड है, कीड़ा धर्म पखंड है, जिदे चो जप कढ दो, कीर्ति कढ दो, सिमरन कढ दो, वो कर्म भी पखंड, वो धर्म भी पखंड। संसार दे चे बेशतर धर्म पखंड ते खड़े ने, बेशतर कर्म बेख ने और कुछ नहीं है, क्योंकि सिमरन नहीं है। जिदे नाल हिरदे दी स्वच्छता होंदी है, जिदे नाल बुद्धि दी निर्मलता होंदी है। तो मैं अर्ज करा गुरु ग्रंथ साहब की पहली जड़ी बाणी है, उस पहली बाणी का नाम भी जप है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की पहली बाणी उहदा नाम जाप है। सिख धर्म खड़ा है जप ते जाप ते। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की सारी बाणी जप की व्याख्या है, जप किवें करना है, कदों करना है, किस तरह करना है, पर सारी गल समझाई गई है। जपो त एको नामा आवर निराफल कामा, बाकी सब निष्फल। जप तो जब तू जपेगा तो फिर तैथों जो कुछ भी प्रगट होवेगा सब सेवा है, बड़ी पवित्र, अत्यंत पवित्र। तो मैं अर्ज करा मूल गल सिख जगत दे चै जप। ब्रह्म ज्ञानी पैदा होने क्यों बंद हो गए? क्या सेवा की कमी है? नहीं, सेवा च अज भी सारी दुनिया नालों असी अगे हाँ। जप दे च रह गए, जप दे च पछड़ गए। इस वास्ते साढ़े विच ब्रह्म दृष्टिया का पैदा होना बंद हो गया। इस वास्ते अक्सर साढ़े गुरुद्वारे भी लड़ाई झगड़िया के बुनियाद बन गए। जप कोई नहीं, सिमरन नहीं। जिसने वातावरण फिजा नू महान बनाना सी, रसक पुरशा ने, साधक पुरशा ने, वो गल रह गई। पर मैं आखा बीज ते नाश नहीं, गुरु मेहर करदा है, करेगा, करदा ही रहेगा। लेकिन गुरमत खड़ी है जप ते। जप किसदा करना है? निर्गुण ब्रह्म दा। और जप किस तरह करना है? साहिब कहिंदे रसना नाम जपो तब मथिए इन बिद अमृत पाओ। रसना नाल जपना है और किस तरह जपना? जबान ने जपना है। ते जपया होया सार्थक हो गया है, सफल हो गया है, किस तरह पता चलेगा? वाहिगुरु वाहिगुरु आखदिया जब रसना नू रस आ जाए, समझ लेना जप नू फल लग गए, जप नू भाग लग गए। प्रभ जी बसे साध की रसना। प्रभु दा वासा किथे है? साधक दी रसना ते है। भाव वो वाहिगुरु आखदा है, उन्हूं रस आ जांदा है। वो रस की है? परमात्मा। वो रस की है? अकाल पुरख। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर नाम। मैनू माला दी लोड़ नहीं, कबीर कहंदे ने, अकाल पुरख दा नाम उहदी होंद मेरी जबान ते विराजमान। प्रभ जी बसे साध की रसना। वो ते साधक दी रसना ते रहिंदा। ते साधना की है? साधना है जप। ते जप की है? किस तरह करिए? रसना नाम जपो तब मथिए इन बिद अमृत पाओ। एक दो जीबो लख होवे, लख होवे लखवीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। जप रसना नाल करना है। जप सफल हो गया है तो समझना प्रभु दा नाम रसना ते वस गया है। किस तरह पता चलेगा? वाहेगुरु आखण दे बिस्मात तारी हो जाएगा। वाहेगुरु आखण दे परम आनंद दे झरने झल पैण के समझ लो इस मनुख दा अभ्यास सफल होया। हुण इस तो जो कुछ भी होवेगा, ये जो कुछ भी करेगा सब सेवा है। इस तरह दा पुरुष तलवार भी चुक लैंदा ते सेवा है। हो सकदा है किसी दा पानी पिलाना सेवा करनी भी सेवा ना होवे, पर हो सकता है किसी का मैदान जंग दे तलवार चलाना भी देश दे कौम दी सेवा होवे। इस तरह का पुरुष जो कुछ भी करेगा सब सेवा है। पर सिमरन तो हीणा मनुख, जप तो हीणा मनुख है, जो कुछ भी करेगा सेवा विच फितूर ते वरूर दा जन्म होवेगा। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरमत नो धर्म नो जप ते खड़ा कीता है। अकाल पुरख दे दो रूप ने, निर्गुण ते सरगुण। निर्गुण दा सिमरन इस ढंग नाल कर कि तू जुड़ जावे ते सरगुण दी सेवा कर। सरगुण स्वरूप का सिमरन नहीं करना, संसार का सिमरन की करना, सूरज चंद तारिया का, मनुखां का, पशु पंखियों का, जमीन आसमान का सिमरन थोड़ी करना है, सेवा करनी है। जो निराकार है, जिदा आकार नहीं, उहदा सिमरन करना है। इस वास्ते गुरु घर विच संगत है, पंगत है, विपुरखा सेवा तो पंगत विच करनी है, सिमरन तो संगत विच करना है। ते हुण मैं अर्ज करा, पंगत दे सेवा करन दी जाच आ गई, संगत दे सिमरन दी जाच ना आई। जे घंटा बैठे हैं संगत दे च, ते घंटे च किधरे दो मिनट भी प्रभु दी याद अंदर चली होवे, गल औखी है। ते संबंध जुड़दा याद नाल, सिमरन नाल। मैं फिर अर्ज कर दे, किसे नाल संबंध जुड़दा है? सिमरन नाल। तुसी परमात्मा नू याद करो, परमात्मा भी याद करन लग पैंदा है, रिश्ता जुड़ जाता है, संबंध जुड़ जाता है। तो आरती दे शब्द दे च मेरे पातशाह ने दो रूप अकाल पुरख दे बयान कीते, वर्णन कीते, निर्गुण ते सरगुण। मूल निर्गुण है, इस वास्ते सिमरन मूल है, सिमरन बुनियाद है, क्योंकि सरगुण का सारा पसारा निर्गुण के आसरे ते खड़ा है। आत्मा निर्गुण है, शरीर सरगुण है, पर यह अस्थूल सरगुण शरीर आत्मा के आधार से खड़ा है। वो ना होवे तो शरीर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मूल है। ते मूल नाल जुड़न दा साधन है सिमरन। गुरु घर दे च ते सिमरन प्रधान। ते जद कोई सिमरन की कला सिख लैंदा है, भाव करन लग पैंदा है, मेहर हो जाती है, फिर उस तो जो कुछ भी आउंदा है सेवा है, वो जो कुछ भी करेगा सेवा है। और सिमरन नहीं तो सेवा करदे होया कौम नूं दगा दे जाएगा, धोखा दे जाएगा, देश नूं धोखा दे जाएगा। बड़े वड्डे वड्डे पै ने देश की सेवा करन वाले, पहले सेवा करदे ने फिर देश नूं लुट लैंदे ने, पहले कौम की सेवा करदे ने फिर कौम नूं धोखा दे देंदे ने, पहले गुरद्वारियां दे सेवा करदे ने फिर चौधरपणा चाहीदा, फिर हंकार फितूर शिखर ते पहुंच जांदा, फिर पूजा होवे, फिर प्रतिष्ठा होवे, आखिर यही गल चल पैंदी है। तो मैं अर्ज करा, अगर सेवा दे च निर्माणता बनी हुई है तो इस तरह का पुरुष सिरमौर पुरुष है। तो निर्माणता बिना सिमरन तो नहीं बनेगी। तो सिरमौर बंदा कीड़ा है, महान मनुख क्यों कौन है? जो सारिया के चरणों की खाक बन गया है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जांका मिटे अभिमान। चौथा शब्द सोहेले दा साहेब श्री गुरु रामदास जी महाराज का उच्चारण किया होया, तो इस दे विच भी बड़े मूल भाव साहिब गुरु रामदास जी महाराज ने साढ़े सामने रखे ने, वह मैं आप जी के सामने रखा। ये शब्द गौड़ी राग दे च है और पूर्वी गौड़ी दे च। पहला शब्द गुरु नानक देव जी महाराज का गौड़ी दीप की सी, चौथे पातशाह का ये पावन पवित्र वाक जो सोहले दी बाणी दा चौथा शब्द है, ये गौड़ी पूर्वी दे च है। महाराज इस पावन पवित्र वाक दे च प्रमाण कर देन के मनुख दा शरीर एक नगर है, एक बहुत वड्डा शहर है। किसी बहुत वड्डे शहर दे च जैसे संगणी वसों आउंदी है, मनुख दे इस पिंड दे बहुत कुछ है, बड़ा पसारा है, बहुत कुछ है, बड़ा असीम पसारा है। ते भरिया ये किस चीज नाल है? साहिब कहिंदे ने काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है। ये शरीर जो वासना ते क्रोध नाल भरिया होया है, और मैं अर्ज कर दिया शरीर का जन्म वासना तो होया, वासना रोवे रोए देच है, रोम रोम देच है। वासना की पूर्ति हो जाए मोह वधदा है, वासना की पूर्ति देच रोग खड़ी हो जाए क्रोध वधदा है। कदी बगौर मुताला करना, कामना पूर्ति देच जिसने रोक खड़ी कर दी है क्रोध वधदा जाएगा। जिथे जिथे कामना पूरी नहीं हुई, जिथे जिथे वासना पूरी नहीं हुई, क्रोध का जन्म होंदा है। अति क्रोधी मनुख समझ लेना यदि वासना पूर्ति देच कुछ रोक खड़ी हुई है, तदी क्रोधी है, तदी खै खै के पैंदा है, तदी छेता हो गया है। और जब वासना पूरी होने लग पवे तो मोह वधदा जाएगा, मोह वधदा जाएगा। कभी बगौर मुताला करके देखना, जिस दे राही या जिस तरह वासना की पूर्ति होंदी जाए मनुख के अंदर मोह वधदा जाएगा उस प्रति। पर वासना की पूर्ति ना होवे तो फिर क्रोध वधदा है, खिजदा है बंदा, चिड़चिड़ा सुभा हो जाता है अक्सर। सहजे सहजे बुढ़ेपे तक पहुंचदिया पहुंचदिया सुभा के चिड़चिड़ेपण का एक कारण है कि वासना तो बहुत सारिया ने पूरी नहीं आदिया, तो शरीर की सत्या रह गई, वासना प्रबल, क्रोध वध जाता है। साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का फरमान कि उम्र के वधण के नाल वासना घटती नहीं, वासना वधती है। पुंडर केस कुसमते धोले सपत पाताल की बाणी, लोचन सरमें बुध बल नाठे ता काम पावस माधाणी। भगत त्रिलोचन जी श्री राग का पावन पवित्र वाक, पुंडर केस, केस चिट्टे हो गए, बिल्कुल चिट्टे। पुंडर केस कुसमते धौले सपत पाताल की बाणी, जबान लड़खड़ा गई है, शुद्ध बोल नहीं सकता, बचन जबान तो शुद्ध नहीं निकलते, लड़खड़ा गई है। नेत्रां दी जोत घट गई, कन्नां दी स्रोत घट गई, हत्थां दे कंबड़ी छिड़ गई, पैरां दे चलण दी शक्ति रह गई, लोचन सरमें बुध बल नाठी, सोचण शक्ति भी घट गई, चेते शक्ति भी घट गई, लोचन अखां दी दीद भी घट गई, जबान दी कुवते गोयाई भी घट गई, शरीर दी सारी सत्या घट गई। पुंडर केस कुसमते धौले सपत पाताल की बाणी, लोचन सर में बुध बल नाठी ता काम पावस माधाणी। भावे मटकी दे कुछ भी नहीं पर वासना की मधाणी त्यों दी त्यों चल रही है, वो कोई फर्क नहीं, कामना हो ही। भावे मटकी दे कुछ नहीं रहा, दही नहीं, चाटी नहीं, कुछ भी नहीं, ना अखां दे वेखण दी शक्ति रही, ना कन्ना दे सुनन दी, ना दिमाग दे सोचण दी, ना चित दे चेते शक्ति रह गई, जबान दी कुवते गोयाई भी नहीं रही है, लेकिन कामना दी मधाणी चल रही है। ते जद कामना दी मधाणी चल रही है तो हुण मक्खण ते निकलना नहीं, क्योंकि मटकी च है नहीं कुछ, कामना दी पूर्ति ते होनी नहीं, तो क्रोध वधेगा। इस वास्ते बुढ़ा होंदा होंदा मनुख करीबन करीबन क्रोधी हो ही जांदा, कारण वासना है पूर्ति नहीं होती। पंडित गुलाब सिंह जी महाराज गालबन जद 90 साल दे हुए ते महापुरुषों च एक बहुत वड्डी खूबी है कि वह अपनी कमजोरी ते पर्दा नहीं पाते, साफ जाहिर कर देंदे। बाबा फरीद कहंदे काले मैडे कपड़े काला मैडा वेश, गुण ही भरिया मैं फिरा लोग कहन दरवेश। लोकी दरवेश कहंदे ने पर मैं दरवेश नहीं हाँ, मैं ते गुनाहां नाल भरिया। लोकी मेरे कपड़िया नूं वेख के दरवेश कहंदे ने, लोकी मेरी सूरत नूं वेख के दरवेश कहंदे ने, मैं दरवेश नहीं हाँ। बहुत वड्डी निर्माणता। पंडित गुलाब सिंह जी महाराज तो पूछया गया मन की हालत दसो, 90 साल दे नेड़े सन, कमर झुक गई सी, शरीर की सारी सत्या जा चुकी सी, और खुद कबूल देने इस पवित्र छंद देच, तन के बल ने अब पीठ दई हर हार चले दृग बाल संगाती, तन दा बल जांदा रहा। पंडित गुलाब सिंह जी महाराज कहने जो मेरे बाल सखा मित्र सन वह भी रुखसत हो गए, मर गए। तन के बल ने अब पीठ दई, हर हार चले दृगबाल संगाते, तज के ए लोक बिखे हमको चल आप गए सुरलोक सजाती। मेरी जात वाले, मेरे गुरु भाई, मेरे हम उम्र वो भी शरीर नू त्याग के इस जगत नू त्याग के परलोक गमन कर गए। मेरे शरीर दा बल जांदा रहा, अखां दी जोत कन्नां दी स्रोत जांदी रही। जग मीत सखा मुख फेर गए, अब सेवक हां ना पुछे मम बाती। कुछ मित्र जड़े हैगे सन, वो मैं बुढ़े नू वेख के मेरी कमजोर सत्या वेख के छड़ के चले गए। ते जिहड़े मेरे सेवक सन, जिहड़े मेरे कोल पढ़दे सन, पंडित गुलाब सिंह जी कहिंदे ने वह भी चले गए। जब उन्होंने देखिया हुण पढ़ाण की समर्था ही नहीं रखता, इहदी ते कुआ ते गोयाई चली गई, इहदी ते नज़रां चलियां गईयां, इहदी दा इहदा शरीर दा सत चला गया, ताकत चली गई। तो आप कहिंदे ने उस साथी मित्र विद्यार्थी सब चले गए, रुखसत हो गए। जग मीत सखा मुख फेर गए, अब सेवक हां ना पूछे मम बाते। मम आए पलांगम हे तृष्णे, एक तू मम संग रही दिन राते। नमस्कार है ऐ वासना ऐ तृष्णा तेनू, सारे मैनू छड़ के चले गए, तू नहीं गई, तू त्यों दी त्यों मौजूद। मेरे बाल सखा मित्र चले गए, मेरे विद्यार्थी चले गए, मेरे सेवक मैनू छड़ के चले गए। तन दा बल चला गया, अखां दी दीद चली गई, कन्ना दी स्रोत चली गई, दिमाग दी सोचण शक्ति चली गई। पर कमाल दी गल है, वासना तू अपना उसे तरीके नाल आसन मल के बैठी है, गई नहीं। भगत त्रिलोचन जी महाराज श्री राग दा पावन वाग, पुंडर केस कुसमते धौले, सपत पताल की बाणी, लोचन सर में बुद्ध बल नाठी, ता काम पावस मादाणी। भावे मटकी दिच कुछ भी नहीं, न वेखण दी शक्ति, न बोलण दी, न चलण दी, न सोचण दी। पत्र लोचन जी कहिंदे कामना दी मदाणी त्यों दी त्यों चलदी पई, सुक्की मटकी विच वासना चल रही है, ते वासना दी पूर्ति करन वास्ते सत्या कोई नहीं, तो क्रोध वधेगा, लाजमी वधेगा। वासना दी पूर्ति हो जाए ते मोह वधदा है, ते वासना पूर्ति विच रोक खड़ी हो जाए तां क्रोध वधदा है। इस वास्ते काम ते क्रोध दोवें कट्ठे रहिंदे ने। वासना किस दी पूरी होई अज तक? किसे दी भी नहीं। ते अधूरी वासना क्रोध नूं जन्म देंदी। बहुता क्रोधी मनुख समझ लेना वासना दी पूर्ति कर नहीं सकदा, हो नहीं रही, क्रोधी है। क्रोधी होंदा जाएगा, होंदा जाएगा, वासना भी वधदी जाएगी, क्रोध भी वधदा जाएगा। ते साहिब कहिंदे ने काम क्रोध काया को गाले, ज्यों कंचन सोहागा डाले। ये दोवें कट्ठे रहिंदे और शरीर का सत्यानाश कर देंदे ने। महाराज कहिंदे ने ये जिहड़ा नगर शरीर रूपी नगर जो काम ते क्रोध नाल भरिया होया सी, साधु नूं मिल के काम ते क्रोध का खंड खंड कर दिता, टुकड़े टुकड़े कर दिता, तोड़ दिता। काम की होंद नूं, क्रोध की होंद नूं तोड़ दिता है, खंड खंड कर दिता है, खंडल टुकड़े टुकड़े जर्रा जर्रा कर देता है। काम क्रोध नगर बो भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है। पूरब लिखत लिखे गुरु पाया, मन हर लियो मंडल मंडा है। तुसी किस तरह खंडल कर लिया? वासना ते क्रोध दे तुसी किस तरह टुकड़े टुकड़े कर दिते? जदके क्रोध कईयां नूं टुकड़े कर रहे हैं, जदके वासना कईयां नूं रेजा रेजा करके रख देती है, बंदियां नूं तड़पा के रख देंदी है, बंदियां दी हस्ती मिटा के रख देंदी है। तुसी काम ते क्रोध दी हस्ती नूं मिटाया ते किवें मिटाया? क्रोध मनुख दे अंदर है, सिर्फ उकसाहट चाहीदी है, पैदा हो जांदा है। वासना मनुख दे अंदर अठे पैर चलदी है। वासना संसार दी हुंदी है, प्रार्थना निरंकार दी हुंदी है। जितनी वड्डी अंदर वासना उतना वह संसारी मनुख, ते जितनी वड्डी अंदर प्रार्थना है अरदास है उतना ही वह रब दे नेड़े है। वासना निरंकार नाल नहीं जोड़दी, ते खिमा करनी संसार की कोई प्रार्थना भी नहीं आती, प्रार्थना निरंकार की होंगी है, प्रार्थना अकाल पुरख की होंगी है, प्रार्थना गुरु के अगों करी दी है। ते वासना नाल रब मिलता भी नहीं, प्रार्थना नाल मिलता है। इन्नी मैरस करते अरदास करनी पैगी, जोदड़ी करनी पैगी, उत्थे हुक्म नहीं चल सकता। नानक हुक्म ना चले नाल खसम चले अरदास। जिहदे प्राणा दे चों प्रार्थना निकलदी जाए, रोज करे, सवेरे करे, शामी करे, दोपहर करे, अठे पैर प्रार्थना दे चोवे, अरदास दे चोवे, जोदड़ी दे चोवे, हिरदा रब दे नेड़े हो जांदा है, परमात्मा दे नेड़े हो जांदा है। ते हर वक्त ही अंदर वासना चले, बंदा संसारी, वासना ते संसार दी होंदी और किस दी होंदी। ते वासना दे च पिया होया मनुख अत्यंत मैला, अत्यंत मैला। महाराज कहिंदे ने पूर्वले लेखां दे मुताबक कोई पूर्वले संस्कार जो कल कीता है ना करम, वह भी पूर्वला है। एक महीने जो पहले कीता है वह भी पूर्वला है। एक साल जो पहले कीता है वह भी पूर्वला है। एक जन्म जो पहले कीता है वह भी पूर्वला है। हजारा जन्म जो पहले कीता है वह भी पूर्वला है। पूर्वला साढ़े नाल चल रहा है, मिटदा नहीं है। चित्रगुप्त जो कल कीता से वह भी साढ़े चित्रगुप्त का हिस्सा है। जो एक साल पहले कीता से वह भी साढ़े अंदर पे है। जो एक जन्म पहले कीता से वह भी साढ़े अंदर पे है। ये नाल चलता है। ते चित्रगुप्त दे च जद शुभ कर्मा दे बीज संस्कार बहुत कट्ठे हो जाण तां कहिंदे ने फिर इस तरह दे पुरश नूं सतसंग नसीब आउंदा है। अंदरों खिच मिलदी है, प्रभु मिलण दी है, अपने आप नहीं मिलेगी। अगर किसी दे अंदर तड़प पैदा होई है रब दे मिलण दी ते कोई संस्कार ने, ते जे संस्कार ने ते कुछ पूर्वली कृत है। कल जो कुछ कीता सी ओह जम पिया, पैदा हो गया। कुछ ऐसे बीज ने फल तक पहुंचण लग्या साल दो साल ला देंदे ने, कुछ ऐसे बीज ने फल तक पहुंचण लग्या चार पांच महीने लांदे ने, दो तीन महीने लांदे ने, कुछ ऐसे बीज ने पांच सात साल लग जांदे ने फल तक पहुंचदे आ। तो संस्कार कीते हुए कर्मां तो बने संस्कार, संस्कार फली बहुत होवन, वक्त लगता है, कुछ समा लगता है। और जद अचनचेत रब्बी तड़प पैदा हो जाए, प्यास पैदा हो जाए, रब दी धूह अंदर पैदा हो जाए, इस पासे चलण दी बहुत वड्डी प्रेरणा अंदरों ही पैदा होवे, कोई पूर्वले संस्कार जागे ने। ये पूर्वले कल दे हो सकते ने, महीने पहले दे हो सकते ने, एक साल पहले दे हो सकते ने, एक जन्म पहले दे हो सकते ने। जैसे कबीर जन्म तो ही साधना करन लगे सन, थोड़ा जिहा होश संभालिया ते भजन करन लग पे। ते इन्हां दे पूर्वले संस्कार ने और खुद ओह मनदे ने, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया ना जाई। भट्ट कहिंदे ने गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बारे, तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो। ए गुरु अर्जन देव जी, तुसी जमदिया ही ब्रह्म ज्ञानी हो। तैं जन्मत गुरमत, तुसी जमदिया ही गुरमत दे धारनी, थोड़े कोल गुरु दी मत है, जमदिया ही। तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो, तुसी जमदिया ही ब्रह्म दी पहचान कीती है, इतिहासक सबूत है। एक साल दे सन जद साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ते गुरु अमरदास जी महाराज की गद्दी ते बैठन लगे, चढ़ के कोशिश पे करन, ते माता पानी जी आए भजे हुए। उन्होंने एकदम पकड़िया, आख्या नहीं, इस सतगुरु का सिंघासन है, इस ते नहीं बैठी दा। एकदम गुरु अमरदास जी ने चुक के बिठा दिता, आख्या दोता बाणी का बहुता, इते बाणी का सागर है, इते नाम का सागर है। सतगुरु नूं दिखाई दे रहा सी, इते नाम का सागर है, इते बाणी का जहाज है, इते जगत नूं पार उतारण वाला है। दोता बाणी का बोता, भट कहिंदन ते जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो। मन कोई परमात्मा का रूप बना ही लैंदा इस तरह का होवेगा, कारण रूप पकड़ दे चाहुंदा, रूप समझ दे चाहुंदा, आकार पकड़ दे चाहुंदा। इस्लाम ने भावें निराकार का नारा लाया पर निराकार का पुजारी नहीं है। संगे अश्वत नूं बोसा दे के आउंदे हैं, आखिर मक्के का भी कोई रंग रूप है। ते सिर्फ मेहंदी की तरफ ही सजदा करना यह भी रूप की बोध है, वरना परमात्मा के चारों पासे व्यापक हर दिशा विच मौजूद। भाव जिन्होंने निराकार की गल आखी उन्होंने भी मन लिया वो किसी थान पर सतवें आसमान पर बैठा है, आप ही आकार हो गया। सतवें आसमान पर है, इतने तो है ही कोई नहीं। बैकुंठ दे बैठा है, इतने तो है ही कोई नहीं। तो मैं अर्ज करा
ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਜਪਣ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਹੋ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵਸ ਲਈ ਹੈ, ਮਨ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ, ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਆ ਹੋ ਕਥੀ ਕਥੇ ਕਥ ਦੇਖਾ, ਮੈਂ ਅਕਥ ਨਾ ਕਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਹੋ, ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਨਾਸਰੀ ਰਾਜ ਲੈਣ ਕਰੀ, ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਵੈਸੇ, ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਵੈਸੇ, ਨਾਰ ਨਾ ਪੁਰਖ ਕਹੋ ਕਹੋ ਕੈਸੇ। ਸੁਭਾਵ ਕੇ ਗਗਨ ਮੇ ਥਾਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੋਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋਗੀ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋਗ ਕਰਨਾ, ਜੋੜ ਕਰਨਾ, ਭਾਗ ਕਰਨਾ, ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਭਾਗ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਜੋੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਭੋਗ, ਜੋ ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਭੋਗੀ। ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋਗੀ। ਜੋ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜੋਗੀ। ਜੋ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਭੋਗੀ। ਭਾਗ ਕਰੇ, ਭਾਗ ਮਤਲਬ ਤਕਸੀਮ ਕਰੇ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰੇ, ਵੰਡੇ। ਭੋਗੀ ਦੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਯੋਗੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਯੋਗੀ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਵੈਸੇ, ਸੁਨ ਸਮਾਵ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਗੀ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਗੀ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਰ ਨਾ ਪੁਰਖ ਕਹੋ ਕਹੋ ਕੈਸੇ। ਸਿਲਸਿਲਾਵਾਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ। ਨਾਰ ਨਾ ਪੁਰਖੇ ਕਹੋ ਕਹੋ ਕੈਸੇ। ਉਹ ਨਾਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਰ ਤੇ ਨਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਨਰ ਹੈ ਨਾ ਨਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਜੋਤ ਰਹੇ ਤੇ ਬਲਾਈ, ਸੁਰ ਨਰ ਨਾਥ ਸਚੇ ਸਰਨਾਈ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜੀਏ? ਉਹ ਜੋਤ ਵੀ ਐਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਵੀ ਐਸੀ ਜੋ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਵੀ ਐਸਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੁਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਨਹਦ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਵਾਜਨ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦੇ ਪੈਂਦੇ ਉੱਥੇ? ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜਨ ਤਭੇਹੀ ਅਨਹਦ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਇਆ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੋਰੇ। ਤੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਕੜੀਏ? ਤੇ ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਵੈਸੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਲਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਗਨ ਥਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਦੀਵੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਸਿਆਰੇ ਇਹ ਉਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਚਮਕਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੋਤੀ ਨੇ। ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਜਨਕ ਜਾਣ ਇਹ ਮੋਤੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਡਲ ਸਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਡਲ ਉਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਮੋਤੀ ਜਾਣੋ ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚੌਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਏ ਬੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਮੱਲੇ ਪਰਬਤ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੱਲੇ ਪਰਬਤ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੁਲੰਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਚ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਮੱਲੇ ਪਰਬਤ ਘਾਟੀ ਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਪਹਾੜ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੱਲੇ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਸੁਗੰਧੀ ਫੈਲਦੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਦੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਲਿਆਗਰ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੱਲੇ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਪੈ ਮਲਿਆਗਰ। ਉਂਝ ਚੰਦਨ ਚੰਦਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਮਲਿਆਗਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੱਲੇ ਪਰਬਤ ਪਹਾੜ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਸਹਿਬਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚੌਰੋ ਕਰੇ। ਧੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੱਲੇ ਪਰਬਤ ਦੀ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਵਨ ਜੋ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਧੂਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹਾ ਧੂਪ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ? ਨਿੱਕੀ ਜਿਹਾ ਧੂਪ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਅਤੇ ਚੌਰ ਇਹ ਸਗਲੀ ਪਵਨ ਸਮੂਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਵਨ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਤਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮਾਨੋ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਉਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਹੇ ਕਰੀ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ? ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ? ਜਿਤਨਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਹੈ। ਭਉ ਖੰਡ ਨਾਮ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਇਹ ਭੈ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਉ ਖੰਡਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਭੈ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਡਰ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਭਉ ਖੰਡਨ। ਤੂੰ ਤੇ ਭੈ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਆਪ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਅਵਰ ਡਰਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰਾਂਗਾ, ਭੈ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਉ ਖੰਡਨ, ਭੈ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਭੈ ਕਾ ਮੂੰਹ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ, ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਡਰਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਭੈਭੀਤ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੁਦ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਉਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਫਰੀਦਾ ਤਿੰਨਾ ਮੁੱਖ ਡਰਾਵਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰਿਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਘਨੇਰਿਆ, ਅੱਗੇ ਠਾਉ ਨਾ ਠਾਉ। ਬੜੇ ਡਰਾਵਣੇ ਨੇ, ਭਿਅੰਕਰ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਭਿਅੰਕਰ ਮੁਖੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਲੰਬਾਈਏ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਭਉ ਖੰਡਨ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭੈ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, और इस आरती का मैं किस तरह जिक्र करा, कैसी आरती हुई है, आरती किस तरह की हो रही है, मैं किवें बयान करा। भव खंडना तेरी आरती, तेरी आरती है बहनों नाश करने वाले, डर नू नाश करने वाले परिपूर्ण परमात्मा, यह तेरी जी आरती है अगमी आरती। आरती में संख वजदे ने, आरती में नरसिंगे पूरे जाते हैं, आरती में खड़ियाल वजाए जाते हैं, शब्द गायन होते हैं। महाराज कहते हैं अनहता शब्द वाजंत भेरी, भेरिया घड़ियाल पनीरिया संख ये नाद जो बदले है केड़ा अनहत, जो दो चीजों में टकराव तो शब्द पैदा होवे उन्हें कहते हैं आहत, ते जो अपने आप है उन्हें कहते हैं अनाहत। दो तरह के शब्द होते हैं आहत अनाहत। अनाहत शब्द हो जिन्हों पैदा होने लिए दूसरे तीसरे की लोड़ नहीं, और जो वज ही रहे महाराज कहते हैं भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद, ओ नाद हर घट घट दे जो है वज रहे अनहद नाद, हर घट घट दे घट घट वाजे नाद। तुसी आखोगे सुनाई नहीं देता, ध्यान बार है। जिस दिन मनुख का ध्यान अंदर प्रवेश करता है उस दिन बंदा अनहद बाणी सुनता, जिस दिन बंदे का ध्यान अंदर प्रवेश करता है उस दिन सुन मंडल में परम ज्योति के दर्शन करता है। पर गल सारी ध्यान साधना की, मैं इस तरह धर्म खड़ा है ध्यान साधना की, ध्यान तो बिना गल नहीं। महाराज कहते हैं ये सारिया वधनिया ने पहरिया भाव नरसिंघे सं गंडिया इत्यादि ये वधनिया ने केड़िया जो अनहद बाणी है, एक रस जो शब्द चल रहा है सारिया के अंदर घट घट वाजे ना। जब भी किसी पहुंचे हुए महापुरुष तो पूछा गया है तू रब विच लीन हो गया, रब की तू झलक वेखी की वेख्या, तो कहता मैं रब न सुनया तो रब न वेख्या। गल इस तरह की थी बनता है दोचन पेखा ओ हर बिन आवर न देखा। गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रमाण करते हैं पे, मैं पेखे हो प्री ऊंचा मोहन सबते ऊंचा, ते सुनिया भी है कि सुने अनहद बाणी नाद वजाए, चेत अचेत मूड मन मेरे बाजे अनहद बाजा, अनहद बाणी बजे। अनहद बाणी परमात्मा की आवाज है, ते परम प्रकाश परमात्मा का स्वरूप है, उन्हों सुन ले है उन्हों वेख ले। जिहड़े कहिंदे ना श्री कृष्ण के दर्शन कर ले ने, गुरु नानक देव जी महाराज के दर्शन कर ले ने, दरअसल जिहड़े संस्कार मनुख ने चित्र दे मूर्ति के अंदर कट्ठे किए होते हैं वह बहुते भावुकता विच बार प्रगट हो जाते ते मनुख उस ढंग नाल वेख लैंदा। जितने चिर तक अनहद धुन नहीं सुनाई देनी पई तो मैं कहनी अजे गुरु ते परमात्मा की आवाज़ नहीं सुनाई देती, तो जितने चिर तक परम चानना नहीं दिखाई देता जिन्हों ब्रह्म अगन आख्या है उतने चिर तक परमात्मा का स्वरूप नहीं दिखाई देता, वास्तविक स्वरूप नहीं दिखाई देता। तो साहब कहते ने यह अनहद बाणी जिहड़ी है, ये अनहद शब्द जिहड़ा है ये भेरियां वज रही हैं, ये शहनाइयां वज रही, ये नरसिंगे पूरे जा रहे हैं, ये संख वज रहे हैं, ये घंटियां वज रही हैं, इस ढंग की ये धुन हे प्रभु तेरे दर पर चढ़ी हुई है। किसी ने इस धुन को सुनिया सी, किसी ने इस जोत को वेख्या सी, ते हुण आम जगत को उस पासे तोरना सी, तो मंदिर में दीवा जगाया गया, एक घंटा टंग दिता गया, तो कोई मंदिर में प्रवेश करे तो घंटा वजाना बड़ा लाजमी, आम बंदे नूं समझाना सी, इह संकेत सन इशारे सन कि उहदे घर विच घड़ियाल लज रहा है नाग लज रहा है, उहदे घर विच जोत जल रही। समझाना है सी परमात्मा का मंदिर की है, एक जोत है एक आवाज है, पर जो सिर्फ इतना ही कह दिता जाता एक अनहद बाणी है एक परम प्रकाश है तो उहदा कोई आकार बना के कोई चित्र बना के ना दिखाया जाता ते आम बंदियां नूं तोरना बड़ी औखी गल सी। सेंट्रल सिख म्यूजियम जिहड़ा बनया होया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बनाया, बहुते उन्हां तस्वीरां नूं वेख वेख के प्रभावित होए, कईआं ने केस रख लए भी केसां दी खातर कईआं दे इंज तसीए सहारने पए ने, केस नहीं कुरबान कीते, जिंदगी कुरबान कर दित्ती, जीवन कुरबान कर दित्ता। तो उस निजम दे चित्रां दे चित्र वेख के कई प्रभावित होए, बेशुमार प्रभावित होए। मोटे मन देते इसका बहुत वड्डा प्रभाव पैंदा, सूक्ष्म मन देते इसका बहुत वड्डा असर पैंदा। छोटे जिहे बच्चे नूं अज भी पढ़ाना होवे बाल उपदेश, तां तस्वीरां दे राहीं मैं देखिया अक्खर पढ़ाए जांदे ने, कक्का कलम छच्छा छतरी चच्चा चाकू बाल उपदेश ते लिखिया। मैं तो वेख के हैरान हो जांदा भी बच्चे नूं पढ़ाने ते अक्खर ने तस्वीरां नाल क्यों बनाई जांदी। बच्चा जैसे छतरी नूं वेखदा है ते उहनूं एकदम बोध हो जांदा भी इह अक्खर छच्छा होवेगा, जैसे वह कलम नूं वेखदा है उहनूं बोध हो जांदा है भी इह अक्खर कक्का होवेगा, जैसे चाकू नूं वेखदा है एकदम उसनूं बोध हो जांदा है भी इह अक्खर छच्छा होवेगा। तस्वीरां इस वास्ते नाल बनाईआं गईआं ने, इहनूं अक्खर कंठ हो जा, इहनूं अक्खर याद हो जाण, अक्खर इहदे दिल दिमाग विच वस जाण। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਚੱਚਾ ਚਾਕੂ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੱਕਾ ਕਲਮ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਛੱਛਾ ਛਤਰੀ ਆਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੱਲ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਨੋਰੰਜਨ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਆਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਆਖਦੇ ਸੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਘੇ ਅਸਵਤ ਪਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਆਕਾਰ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ, ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ, ਮਕਬਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਆਖਰ ਆਕਾਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਲ। ਅਜੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਪਨਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਚੱਚਾ ਚਾਕੂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਖਰ 'ਤੇ ਕੰਠ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਗੰਮੀ ਸਰੂਪ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਹੈ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ? ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੱਲਦੇ ਸਵਾਸ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਸੁਣ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਮਨਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਵਿਚਾਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਊਚਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋਏ ਦੋ ਲੋਚਨ ਭੇਖਾ ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਗਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਸੀਮਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਆਖਣ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਅਨ ਜਿਨੀ ਦਿਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪੇਰੀ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ तो फिर अंधा बंदा तो भगत बन ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि बनेगा मेरा। लेकिन अंधे बंदे भगत बने हैं, और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के एक भगत बैठा है, भगत सूरदास जिनी अखा नहीं सन, सारंग राग के जुड़ता शब्द है, उसकी बाणी है भावें एक पंक्ति है, छाद मन हर बेमुखन को संग, ये भगत नेत्रहीन से। और इसका बहुत बड़ा ग्रंथ है सूर सल, ये गुरु अर्जन देव जी महाराज की प्रसन्नता का पात्र बनया। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इसनों गलवकड़ी लै लिया, इन्ना प्यारा तो भगत अखा नहीं सन। अगर वाकई इन्ना ही अखां नाल वेखना है तो फिर अंधे ते भगत बन ही नहीं सकता, नेत्रहीन मनुख वास्ते दे दरवाजे बंद हो गए। नहीं, नेत्रहीन मनुखा ने भी रब नूं वेख्या, नेत्रहीन मनुख भी रब नाल जुड़े ने, उन्होंने भी कर्म आनंद जो है माणे है, और अनंत भगत इस तरह के होए ने जिहड़े नेत्रहीन सन, अखां नहीं सन, लेकिन भगत बन गए, ब्रह्म ज्ञानी बन गए, पूर्ण दृष्ट उन्होंने मिल गए। नानक से अखियां बेअन जिनी दिसंदो मां पिरी, वो अख भी है जिस दिन बुद्धि निर्विचार हो जाती है, तो जिस दिन हिरदा निष्काम हो जाता, हिरदे च कोई कामना नहीं रही, हिरदा शुद्ध हो गया, बुद्धि च कोई विचार नहीं रहा, बाणी पढ़ने हुए कोई होर विचार चल रहे हैं, अजे बुद्धि शुद्ध नहीं है। कीर्तन सुनते हो, वाहगुरु वाहगुरु जपते हो, हिरदे च कोई कामना चल रही है, हिरदा शुद्ध नहीं, कामना कोई भी होगी हिरदे को मैला करेगी, विचार कोई भी होंगे बुद्धि को खिंडा के रखेंगे, मन को खिंडा के रखेंगे, जुड़न वाली गल नहीं होगी। तो बुद्धि शुद्ध होती है निर्विचार के नाल, हिरदा शुद्ध होता है निष्कामना के नाल। जिस दिन हिरदे च कोई कामना नहीं रह जाती, तो बुद्धि में कोई विचार नहीं रह जाता, बंदा झलक वेख लैंदा है, तो बंदा एक नाद सुन लैंदा है जिन्हों अनहद नाद कहा है। साहब उस आरती विच उस अनहद शब्द वाजंत बेरियां का जिक्र पै करते हैं, अनहता शब्द वाजंत बेरी, ये अगौल पुरख, ये समूह गगन पे एक थाल है, सूरज चंद तारे ये दीवे ने, थाल विच पै हुए मोती ने, समुची बनस्पति ये फुल ने, ये सुगंधित चल रही हवावां ये धूप ने, ये अकाल पुरख अनहद शब्द जिहड़ा है ये तेरे दर ते संघ पे वजदा, भेरियां पईयां वजदियां ने, नरसिंगे पे वजदे ने, अनहद बाणी नाद वजाया। तो प्राचीन ऋषि मुनिया ने हुण बंदे नूं समझाणा सी उसके दर ते की है, तो मंदिर बना के घंटा दंग दिता, एक दीवा जला दिता, मंदिर में दीवा जलाना बड़ा लाजमी, दीवा जलाना पुन समझिया गया सी ताकि जोत जल्दी रहे, लोगों को पता चले कि परमात्मा तक जब कोई पहुंचता है तो परमात्मा की दिखाई देता है, एक जोत एक प्रकाश, तो परमात्मा तक कोई जब पहुंचता है तो उसके दर पे उन्हें जो कुछ सुनाई देता है पहले पहले वो अनहद नाद है, घंटा बूहे पर रखा जाता है, जोत अंदर जल्दी होगी। हिंदू धर्म का यह प्रतीक जिसनों सामने रख के सतगुरों ने यह आरती उच्चारण की थी जगन्नाथपुरी ने, जिन्हें इस तरह के इतिहासक मंदिर ने सनातन मत से उत्थे जोत जल्दी रहती, तो बूहे उत्ते घंटा होता है, जिहड़ा अंदर प्रवेश करे उन्हें घंटा पहले बजाना पैंदा, घंटा बजा के अंदर प्रवेश करे, दीवे विच घ्यो पावे जोत जल्दी रहे एक पुन। इशारे पुराने ऋषि मुनिया ने यह कीते कि शब्द की धुन तो बिना जप तो बिना तू मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकेगा, आवाज चाहिए, घंटा बजाए बिना अंदर जाना अपशगन, नाद से बजा घंटा से बजा, हिंदू धर्म में किसी भी मंदिर में प्रवेश करना है पहले घंटा बजाना पैदा, घड़ियाल टंगे पैने, इशारा समझाया गया कि उदे मंदिर में प्रवेश बिना नाद तो नहीं मिल सकता, बिना आवाज तो नहीं मिल सकता, बिना शब्द तो नहीं मिल सकता, शब्द की गुजार चाहिए, दोनों अलावा हो। घंटा इस ढंग का बजाया जाता है कि काफी समय तक उसकी गुजार रहती है, बंदा अंदर भी प्रवेश कर जाता है, गुजार गूंजती रहती है, गुंबद बने आ जाता है, संकेत इशारा कि उस प्रभु के मंदिर के अंदर अनाहत होनी बजती पड़ी है, चल रही है, और जले आया दीवा एक जोत है, प्रकाश है। तो त्रिभुवन जोत रहे दे बलाई सुर नर नाथ सचे सरनाई। साहिब तैनो ज्योति ऐसी है जो तीन भवना दे विद्यमान है। इवें कि किसी एक थान से दीवा पिया चलता समूह ब्रह्मंड दे वो दीवा इतना महान जिदी कोई सीमा नहीं, वो अनहद नाद इतना महान जिदी कोई गिणती नहीं, जिदी कोई पकड़ नहीं। सिर्फ मनुख सुन के विस्मात हो सकता है। सुन समाद अनहद तैनाद कहन ना जाई अचरज विस्मात। गुरु अर्जन देव जी कहते मैं कह नहीं सकता, अचरज विस्मात। उस नाद नु सुने विस्मात हो गया, उस नाद नु सुने हैरान हो गया, अश्चर्यता दे जहे चले गया। वो आरती जिस ढंग की अठे पैर हो रही है, उस हो रही आरती का सतगुरदेव जी ने यह नक्शा खिंचया है। तो ये नाल दसिया है कि जेडे अनहद वाजे पे बजते हैं, ये घड़ियाल पे बजते हैं, भेरियां पई बजदी ने, संख पे बजते हैं, नहीं सुनाई देते। जिन्होंने सुनाई दिते सन उन्होंने सब कुछ बार फिर चित्रा के ना ही प्रगट किया लोगों की समझ में आवे। बार दीवा भी जला दिता, संख भी बजा दिते, भेरियां बजा दतिया, नगारे बजा दते, तरह तरह दिया होर संगीतियां धुनां भी जो है छेड़ दतिया। ते मंदर दे उस अनाहत धुनी की जिस ढंग की गुंजार से गुंबद बनाया गया ताकि वह शब्द घंटे की जिहड़ी धुन है गूंजती रहे। बार उस ढंग का आधार पर बनाया गया ताकि बंदे नूं उस निराकार की समझ आ जाए। पर समझ की आनी सी, बंदा उस आकार के नाल ही जगड़ के रह गया, उस आकार में ही पकड़ के रह गया। इस वास्ते जगत गुरु बाबे नूं जगन्नाथपुरे दी ये महान आरती का शब्द उच्चारण करना पिया। कहने इस शब्द को सुन के कई दिन तक समाधि में रह रविंद्र नाथ टैगोर आखन लगे ब्रह्मंड की आरती है। जो सही आरती है जो हो रही है उसका स्वरूप गुरु नानक देव जी महाराज ने जगत के सामने रखे। उस बंगाली शायर की उस देश के प्रसिद्ध कवि की समझ में यह गल आ गई, पकड़ गल यह आ गई। दो लग मैं दोहरा दिया, खिमा मंग लिया पहले, कि सिख धर्म विचार का धर्म, ऐसी विचार दे पुजारी है। ते गुरु घर दे सिर्फ प्रधानता विचार दी है। अमृत वेला सच ना वड़िया ये विचार, जेडे मूर्तियां दे पुजारी ने, तस्वीरां दे पुजारी ने हैरानगी है, उन्होंने विचार से बड़ी दूर दूर तक फैला दी। पर जेडे विचार दे पुजारी ने उन्होंने कोल विचार कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। गुरुद्वारे जरूर बना दिते हैं, पुजारी असी विचार दे, सच की कोई विचार कोई नहीं, गुरु की कोई विचार कोई नहीं, अनहद बाणी की कोई विचार कोई नहीं, परम प्रकाश की कोई विचार कोई नहीं साढ़े को। ना ये विचार साढ़े को ना असी बच्चों दे सके, ना परिवारों दे सके, देनी सी सारे जगत को साढ़े को भी नहीं है। असी विचार दे पुजारी महाराज कहते अमृत वेला सच ना वढ़ियाई विचार। विचार दे पुजारी को अगर विचार नहीं है तो कहना पेगा धार्मिक तौर पर बड़ी भारी बाल बुद्धि है, ये कोल अजे जवानी नहीं आई, भावें शरीर बुढ़ा हो गया है, धर्म की तो जवानी भी नहीं आई। ये बच्चे का बच्चा इदियां गल्लां तो इदी धार्मिक रहनी तो पता चलता है कि धार्मिक तौर पर इसकी उन्नति नहीं हो सकी। धार्मिक तौर पर यह बच्चे का बच्चा रह गया। हुण जिसके अगों ये आरती हो रही है वो परिपूर्ण परमात्मा कैसा है, सतगुरदेव जी महाराज अगलिया पंक्तियां कुछ खुलासा करते हैं। सिलसिलावार आप श्रवण कर लेना। सहस तो नैन नन नैन है तोय को, सहस मूरत नना एक तोय। जिस सरगुण स्वरूप देखते हैं ये अगौल पुरख तेरिया अनंत अखा ने, सहस तो मुराद के हजारा पर अखरी अर्थ इसके करने पैणगे अनंत, जिदी कोई गिणती नहीं, जिदा कोई शुमार नहीं। पशुओं की अखा ने, पंखियों की अखा ने, साढ़े को अखा ने, कीड़ी मकोड़ियों को अखा ने, तो सब कुछ देखा जा रहा है, एक दूजे को देखा जा रहा है। पशु पंखी देखते पे हैं, कीड़े मकोड़े पे देखते हैं, तो मन में भी जो है देखने की बड़ी जो है शक्त है। साहब सरगुण स्वरूप मैं देखता तो अनेक ही अखा, हर अख तेरी तो ही फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। पर जे मैं निर्गुण की झलक वेखदा तो तेरी एक अख भी कोई नहीं, तू अखा तो बिना। सरगुण दी तेरी अख है, निर्गुण दी तेरी कोई अख नहीं। जे मैं सरगुण स्वरूप दे तैनू वेखा तो तेरी कोई एक मूर्ति है मैं पूजा करा। सहस मूरत हजारा ही मूर्ति, जो कुछ भी मैं देखता पे तेरी मूर्त है, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਚ ਵੇਖਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬਨ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਿਰਾ ਬਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਤੇਰੀ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਚ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਰ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਉ ਗੰਧ ਇਉਂ ਚਲਤ ਮੋਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਰ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਪੈਰ ਨੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਸਭ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਝਲਕ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੂਲ ਦੀ, ਤੋ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਂਦਾ ਗੰਧ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਨੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਹੋ ਸੁੰਘਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਵਿਆਪਕ। ਹੁਣ ਮੂਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਸਾਧਨਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ? ਅਕਾਲ ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਓਗੇ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ ਪਵਾਓਗੇ? ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਗਰ ਜਿਸਨੇ ਉਡੇਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓਗੇ? ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਧਨ ਤੇ ਸੰਪਦਾ ਜਿਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਰਤਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਉਹ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਜਪਸ। ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਇੱਕ ਸਰਗੁਣ। ਰੁਮਾਲੇ ਭੇਟ ਕਰਨੇ, ਪਾਲਕੀ ਬਣਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਨੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਨਾਦ ਨਾਦ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਜਪੋਗੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਜਪਣੀ ਹੈ, ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਜਪਣਾ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਪ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਗੇ, ਪਰ ਜਦ ਜਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇਗਾ ਬੁੱਧੀ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਰਾਮ ਰਸਨ ਵਖਾਣੇ। ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ,